الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ایک اور جمعہ ہمیں نصیب فرمایا. پیارا مہینہ اور پیارا دن, بیسٹ آف دا ڈیز. اور اس میں بہت ساری سنتیں ہیں جو خاص جمعے کے ساتھ ہیں اٹیچڈ. یعنی اگر آج کے دن آپ وہ سنتیں اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, تو آپ کو ایکسٹرا اس کا اجر ملے گا. مثال کے طور پہ غسل کرنا, آپ کسی دن بھی غسل کریں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج کے دن آپ اگر یہ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو آپ کو اجر مل رہا ہے. آج کے دن آپ ویسے کسی دن بھی ناخن کاٹیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج کے دن آپ یہ سوچ کے کاٹتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو پھر آپ کو اجر ملے گا. اسی طرح اچھے کپڑے پہننا, اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا, درود پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن حکم دیا. آپ آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں ہوں گے ضرور, لیکن آج کے دن پڑھیں گے تو آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا. سورہ کہف جو آج کے دن پڑھے گا تو فتنوں سے محفوظ رہے گا. لیکن اتنے فتنے ہمارے ارد گرد کے واقعی بارش کے قطروں کی طرح ہے. ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا, دوسرا ختم نہیں ہوتا تو تیسرا. فتنے ہی فتنے ہیں, کہیں ایمان کے فتنے ہیں, کہیں اور قسم کے فتنے ہیں. یعنی یہ دور دور فتن ہے, اور اس میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم سورہ کہف کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کریں. سمجھ لیں یہ قلعہ ہے جس کے اندر آپ داخل ہو گئے. شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے, لیکن یقین جانے اگر آپ اس کی عادت ڈال دیتے ہیں ہر جمعے کو پڑھنے کی, بالکل مشکل نہیں رہتی, بالکل نہیں. پھر وہ آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گی. شروع شروع کے اندر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا بے شک, لیکن تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے, خاص طور پہ رمضان میں اگر اس چیز کی عادت ڈال دی جائے, تو انشاءاللہ باقی بھی رمضان کے بعد کے دنوں میں آپ کو ہر جمعے کو پھر یہ ایک کمی محسوس ہوگی کہ ہائے آج میں نہیں پڑھ پا رہی تو کچھ کمی ہے. تو آپ کو خود ہی پھر ایک یعنی عادت بن جائے گی کہ جمعہ ہے تو سورہ کہف پڑھنی ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی فتنوں کا خوف نہیں, جتنے مرضی فتنے ہوں میں اس کے اندر آئی ایم اوکے. نہیں کوئی کہہ سکتا. تو ان فتنوں میں ہم کیا کریں, پریشان تو ہم ہوتے ہیں کہ اتنے فتنے ہیں اب کیا کریں. تو جب ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تو پھر ہم کیوں نہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کی حفاظت کرتے. اور دیکھیں یہ جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں نا, یہ اس سے زیادہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے کہ سورہ کاف ایک جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کے لیے حفاظت کرتی ہے. آپ اس کو سیٹرڈے کو پڑھ لیں, سنڈے کو پڑھ لیں, کسی اور دن بھی پڑھ لیں, لیکن وہ بات نہیں ہے جو جمعے کے دن پڑھنے کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کا دن کب سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جمعہ رات کی مغرب کے بعد سے آپ پڑھ سکتے ہیں, جمعے کی مغرب کے درمیان تک. تو کتنا ٹائم ہے نا. اب ہم اس کے اندر کہیں کہ اب پھر بھی نہیں ہم سے پڑھی جاتی, تو آپ کو 24 آور مل گئے. آپ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کر کے تھوڑی تھوڑی چلیں. اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے, آپ سے ایک دفعہ میں نہیں پڑھی جاتی, ابھی آپ نئی نئی اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو تھوڑے تھوڑے چنکس میں پڑھ لیں اس کو, مگر پڑھیں ضرور, اس کو چھوڑیں نہیں. یہ ہماری حفاظت ہے سمجھ لیں, یہ ہمارا قلعہ ہے سمجھ لیں. تو حفاظت کے بغیر تو انسان فتنوں کی زد میں آ سکتا ہے. اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو کیا ہی فتنے ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں آگے ہماری جنریشنز نے کیا دیکھنا ہے. تو لہٰذا سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتے رہیں, اس کی عادت ڈالیں. بہت سارے لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ سورت ہمیں بہت سارے میسیجز دیتی ہے. اس میں ایک بات بہت اہم ہے, بہت اہم, جس کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ ہے کہ دیکھیں آپ, اس میں ایک سٹوری ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. اس سٹوری کے اندر خضر علیہ السلام کچھ कुछ ऐसे काम करते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की समझ में नहीं आते कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। मसलन मिसकीनों की कश्ती या उसको ऐबदार कर दिया, वो लड़का एक कुछ भी नहीं उसने कहा उसको जान से मार दिया। तो बज़ाहिर ये अमल ऐसे लगता है कि ये तो सही नहीं हो रहा, ये क्यों हुआ? इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सवाल कर बैठते कि क्यों आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़ी गलत बात है। इसमें इतना बड़ा हमारे लिए मैसेज है कि बहुत दफा जिंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं, ऐसी हमारे सामने सिचुएशंस बन जाती हैं, ऐसे हमें मसले दरपेश आते हैं कि उनकी हमें कोई मसलियत समझ नहीं आती और हम सख्त परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो इतनी दुआएं की थी, मैंने तो कितनी एहतियात की थी, मैंने तो ये किया था, कितना इंसान सोचता है। लेकिन वो मसाइल जब हम उनसे दो चार होते हैं तो हम घबरा उठते हैं और हम अपनी सोच के मुताबिक सोच रहे होते हैं कि ये क्या है, ये तकलीफ दे चीज क्यों आई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मगर हम भूल जाते हैं कि इसके बातिन में अल्लाह की रहमत है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी खिजर अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये है इसके पीछे मसलहत, तब उनको बात समझ आ गई। जब तक नहीं समझ आई थी तो सवाल कर बैठे थे। ठीक है, तो हमें कितनी चीजों की हमें नहीं है समझ, बल्कि हमारी समझ है क्या, कितनी नाकिस है, हमारी अकल तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म, उसकी हिकमतें जानने की हमारे अंदर कहाँ ताकत है। एक पैगंबर होके मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं समझ सके क्योंकि इनके पीछे हिडन होती हैं, छुपी भी होती हैं मसलियतें जो इंसान बजाहिर देख के समझ नहीं पाता। हाँ, मगर एक मोमिन का ईमान यही है, होना चाहिए कि अल्लाह की तकदीर मेरी ख्वाहिश से बेहतर है, जो मैं चाहती हूं उससे बेहतर है जो अल्लाह ने फैसला किया। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआएं, या अल्लाह ये काम ऐसे हो जाए, बस ये वैसे हो जाए, या अल्लाह ये इस तरह से, मगर वो काम उलट हो गया। अब मैं हैरान होती हूं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, सारी मेरी दुआएं सब जाया हो गई, क्या फायदा मेरी इतनी दुआएं करने का, अब तो आइंदा मैं दुआ मांगा ही नहीं करनी, मेरी कौन सी दुआ सुनी जाती। तो हर किसी ऐसा ना सोचे, अल्लाह को मालूम है मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे हक में क्या चीज है, क्या पता जिस चीज को मैं मांग रही हूं उसमें कितना शर हो जिससे अल्लाह ने बचा लिया, क्या पता कौन सी और कोई बड़ी मुसीबत थी अल्लाह ताला ने उसको मेरी इस दुआ के जरिए टाल दिया। आपको पता है ना, दुआएं जो कहा जाता है ना रद्दे बला है, वो सच बात है कि कोई बला आ रही होती है, दुआ उसको हटा देती है। पता नहीं कितनी बलाएं अल्लाह ने हमसे हटा दी। और इस मसले में जिसने अल्लाह ने हमें डाल दिया, पता नहीं है कि हमारे दर्जे कितने बुलंद कर रहा हो, जो हम जन्नत में जाके देखें तो फिर हम कहेंगे अरे हमारे कितने दर्जे बुलंद हो गए, अच्छा उस मसले की वजह से हुए थे, ये तो अच्छा ही हो गया, मैंने उसके अंदर सबर कर लिया था, तो देखो आज मुझे क्या कुछ मिल गया। तो मुश्किल तो ये होता है, ये बड़ा ही कड़वा घूंट होता है कि इंसान की ख्वाहिश कुछ हो और वो कुछ और जाए। ये कहना आसान है लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में वाकई बहुत मुश्किल है। हम चाहते कुछ हैं, हमारी चाहत के बिल्कुल ही उलट हो गया, और हमारी बहुत ख्वाहिश होती कि ये ऐसा हो जाए, मगर वो चीज हमें नहीं मिलती, वो वैसी चीज, वैसे हालात नहीं होते। तो इसमें कभी भी अल्लाह ताला को इल्जाम ना दे कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे नसीब में लिखा रह गया था, ये मेरे साथ ऐसा होना था। हमेशा याद कर लिया करें ये इस कहानी को जिसको हम दोहराते हैं हर जुमे को, लेकिन चूंकि हमें समझ नहीं होती तो हम बस पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद इससे कुछ लेते नहीं है कि देखो मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं सोचना। कितना बड़ा गलत काम था ना, एक बच्चा किसी का इकलौता बच्चा है जो उसके माँ बाप ने बड़ी यानी दुआओं से मांगा हुआ बच्चा लिया, और उसको कत्ल कर देना, और उसके माँ बाप बहुत दुखी हुए थे जब वो मर गया था। अगर उसमें उनके ईमान के लिए खैर थी, वो बच्चे ने बड़े होके क्या बनना था वो नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला तो मुस्तकबिल को भी जानता है, आगे क्या होना है उसको वो जानता है, हम नहीं जानते, हमारे लिए वो अंधेरा है, हमें नहीं पता क्या होना है आगे। तो जो रब हर चीज का जानने वाला है उसके ऊपर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। बियदिकल खैर, अल्लाह तेरे हाथ में तो खैर ही खैर है। एक मेरा फैसला है कि ऐसा हो जाए, एक तेरा फैसला, आप मुझे बताएं खुद फैसला करके कि किसका फैसला बेहतर हो सकता है। तकदीर क्या है? अल्लाह का फैसला है, और बाकी मेरी ख्वाहिशात हैं, मेरे मेरी चाहते हैं, मेरे फैसले हैं, किसका बेहतर हो सकता है, अल्लाह ही का ना। लेकिन ये भरोसा नहीं आ पाता ना हमारे अंदर, हम फिर अंदर से हमारे कुछ होने लगता है कि हाय क्यों हुआ ये, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई हादसा हो, चाहे किसी की वफात हो, चाहे कोई नुकसान हो, चाहे कोई कहीं कमी रह जाए, चाहे मेरी जैसे मैं चाहती थी वो चीज वो मुझे वैसी नहीं मिली, कोई भी चीज है ये जो मेरे मर्जी के बरखिलाफ हुई है, उसमें अल्लाह पे भरोसा करना सीख ले। एक बच्चा है, वो चाहता है कि उसको छुरी दे दी जाए, उसके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, जमीन पे लेटा हुआ है, माँ नहीं देती, क्यों नहीं दे रही? भाई बेचारे बच्चे पे रहम नहीं आ रहा इस माँ को, इतना तड़प रहा है, दे देना उसको। नहीं, माँ को पता है ये अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, तो उसके हाथ में नहीं देती। अपने रब पे ऐसा भरोसा कीजिए। जब हम कहते हैं ना अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, जो इतनी मोहब्बत करने वाला है, क्या वो अपने बंदों को तंग करेगा? क्या अपने बंदों को सताएगा? कि हमें भरोसा करना है कि अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा ही फैसला किया, इसमें ही खैर है मेरे लिए, और वो पता है कि ये भी नेकी है। ये अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना, उससे बदजन ना होना। बदजन हम आम जिंदगी में नहीं होते, बदजन ऐसी सिचुएशंस में होते। एक हदीस में आपको बताती हूँ, उबादा बिन सामित से रिवायत है, एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी तस्दीक करना और उसके रास्ते में जिहाद करना। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इससे तो आसान अमल कोई बताएं, यानी ये मेरे लिए मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ व दरगुजर करना और सब्र करना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा तो इससे भी आसान अमल का है, यानी और कोई आसान बताएं, दरगुजर करना सब्र करना ये भी मुश्किल है, अब हम भी सब यही कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए एक हदीस के अंदर भी कितनी बातें होती हैं, इसीलिए उलमा इतने मसाइल अहादीस से निकालती है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तेरा क्या फिर ईमान रहा, ये कौन सा ईमान है, हर चीज को तुम्हें आसान अमल ही चाहिए। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बताते जा रहे हैं, ये कर लो फिर, अच्छा ये नहीं कर पाते तो ये कर लो। हम तो फौरन फतवे देने शुरू कर देना कि लो तुमसे ये नहीं होता, क्या तुमने कुरान पढ़ा, क्या तुमने ये किया, क्या सीखती हो तुम, फौरन तानो प्यार। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे उसकी हिम्मत नहीं है तो उसके मुताबिक उसको बता दिया। फरमाया, ये आखिरी बात को गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे बारे में जो फैसला कर दे उसमें अल्लाह ताला को कोई इल्जाम ना देना, यानी ये अफजल अमल है, अमल में ये अफजल अमल है कि आप जिंदगी में कुछ भी पेश आ जाए यही सोचना इसमें भी मेरे रब की तरफ से खैर ही है, मेरे रब ने मुझ पे जुल्म नहीं किया, इसमें उसकी हिकमत है। जब दिल भर आए, जब दिल परेशान होने लगे, जब चीजें उलट होने लगे, तो याद रख लीजिए मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ये दुआ जिक्र में बताया था ना, रदी तु बिल्लाही रब्बा बिल इस्लामी दीन और मैंने इसकी फजीलत भी आपको बताई थी कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे जन्नत में, और इसके बारे में ये भी फजीलत आती है, अल्लाह ताला उसको राजी कर देगा जो ये पढ़ता है सुबह को 3 दफा शाम को 3 दफा। तो क्या ऐसे ही पढ़ रहे हैं? रदीतु बिल्लाह रब्बन का क्या मतलब? हमें अपने रब के फैसले पे, हमें अपने रब के फैसले पे राजी हूं, रदीतु मैं राजी हूं अल्लाह ताला के रब होने पे। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि रब होने पे राजी हूं, मतलब उसके जो भी उसका फैसला है मैं उस पे राजी हूं। ऐसे नहीं है कि हम बिना सोचे समझे पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता। वैसे जिंदगी में इतनी नाराजगियां हैं, गिले शिकवे हैं, अल्लाह ताला के बारे के में बदगुमानियां हैं, और रदीतु बिल्लाही रब्बन पढ़ रहे हैं। तो जो ये वाकई दिल से पढ़ता है ना, अल्लाह ताला फिर उसके दिल को भी राजी कर देता है, और कयामत के दिन अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। लिहाजा जब पढ़े तो सोच समझ के पढ़िए, और कभी एंजाइटी हो, दुख परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं है, सबकी है, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। ये जिंदगी के साथ है, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी है। किसी का कोई मसला, किसी का किसी किस्म का, किसी का किसी किस्म का। तो जब दिल घबराने लगे, एंजाइटी होने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे, तो ये कुछ कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिए। इतने प्यारे कलिमात हैं, इससे दिल को सुकून आ जाता है, और बहुत ही आसान है, आप इनको याद कर सकते हैं। और वो कलिमात क्या हैं? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह अल्लाह मेरा रब, ला उशरिकु बिही शैया, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। ये बेकरारी की, इस्तराब के वक्त की दुआ है, यानी आप इसको पल्ले बांध लें कि मैंने ये जिक्र किया करना है जिस वक्त भी। इसमें कुछ मांगा नहीं गया, बस अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, 2 दफा अल्लाहु अल्लाह, फिर उसके बाद रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, कोई चीज मैं उसके साथ शरीक नहीं ठहराती। तो इस दुआ के अलावा आज का दिन तो वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ने का है, दुरूद शरीफ पढ़ने से भी दिल को सुकून आता है, इसमें भी सुकून अल्लाह ने रख दिया। तो बजाय इसके कि हम दुरूद लखी, दुरूद पता नहीं तंजीना और माही और पता नहीं क्या क्या दुरूद हैं जो कि इंसानों ने खुद ही लिखे हुए हैं, वो दुरूद छोड़े आप, वो वाले दुरूद पढ़े ना जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे दुरूद सिखाए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। एक तो दुरूद इब्राहिमी है ना, बचपन से हम वही पढ़ रहे हैं नमाज में। उसके अलावा भी मसनून दुरूद और भी हैं, अगर आपका जी चाहता है तो आप मसनून दुरूद और पढ़ लें। वैसे तो बेस्ट तो दुरूद इब्राहिमी है, मगर मैंने आपको पिछले 2 जुमों में भी और भी मसनून दुरूद भी बताए हैं, और इसीलिए ताकि चलो एक नहीं तो दूसरा आपका दिल करे पढ़ने का, शॉर्ट दरूद पढ़ने का दिल करे, कि छोटा सा मुख्तसिर सा हो, तो वो भी आपको पता हो और वो भी मसनून हो। क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अल्फाज से ज्यादा अच्छे अल्फाज भी किसी के हो सकते? नहीं हो सकते ना। कोई किसी ने कितने भी अच्छे लिखे हो, मगर ये सारे दरूद तंजीना लिखी हुए, ये बाकी लोगों ने लिखे हुए, ये मसनून नहीं है। अच्छे होंगे, जो भी होंगे अपनी जगह होंगे। अब उनके फजीलते लिखने वाले भी लोग, पता नहीं उनको कहाँ से वही आ गई जो उन्होंने उसकी फजीलते में उसके मुताबिक लिख लिया। उनके पास कोई अल्लाह ताला का फरिश्ता आता बताने के लिए कि ये दुरूद पढ़ोगे तो ये? जितनी मैंने आपको ये बातें सारी बताई हैं पिछले 2 जुमों से, वो सारी हदीस में है कि दुरूद पढ़ने वाले को ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद भी बता दिए, लेकिन हमारी जान को जब चैन नहीं आया तो हमने खुद ही दुरूद लिखने शुरू कर दिए। चलो हमें बहुत शौक है तो हम दुरूद, चलो जिसने लिखा वो उसने लिखा, लेकिन बाकी लोग तो इतनी समझ करें कि वो उन अल्फाज को चूज करें जो मेरे नबी ने बताए। ठीक है, तो आज का जो दुरूद है वो भी मसनून दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये तो इतना तो आता ही है पहले ही आपको, व अजवाजिही व जुर्रियतिही, उनकी बीवियों पे भी, अजवाज पे भी, और अल्लाह ताला उनकी औलाद पे भी रहमत भेज, कमा सल्लैता आली इब्राहिम, जैसे कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत भेजी, वह बारिक, और अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमा अला मुहम्मद व अजवाजी व जुर्रियती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अजवाज पर और आपकी औलाद पर, कमा बारकता आला आली इब्राहिम, जैसे कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई आले इब्राहिम पर, इन्नक हमीदुम मजीद, ए अल्लाह तेरी जात बेशक बुजुर्गी वाली और हमीद है, आप तू महमूद है। तो ये भी एक दरूद है, जस्ट आपको ये नहीं कि इनमें से आप, ये बुखारी में आता है दुरूद, तो ये नहीं है कि ये पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब है या वो पढ़ेंगे ज्यादा सवाब है, बस आपको एक वैरायटी देने के लिए कि ये आप वाकिफ हो जाएं कि और भी दुरूद है, और कभी कोई पढ़ लिया कभी कोई पढ़ लिया, सारे ये फूल हैं गुलदस्ते के। तो इंशाल्लाह आज हमने खास तौर पे, जुमा है तो इस दुरूद का एहतमाम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पे दुरूद भेजना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता खो दिया, यानी वो ये जन्नत से महरूमी का बायस होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद ना भेजना। और कौन नहीं भेजेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमें तो हर पल उनके लिए ये दुआए रहमत करनी चाहिए। दुरूद क्या है, दुआए रहमत है, अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं, तो क्या हम ना भेजेंगे? अल्लाह ताला कैसे दुरूद भेजता है, मतलब ये नहीं कि अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है, ये मतलब नहीं है, क्योंकि दुरूद तो एक दुआ है, तो दुआ हम कहें तो हमारे लिए दुआए रहमत है कि हम दुआए रहमत भेजते हैं, फरिश्ते भी दुआए रहमत भेजते हैं, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है, ये मतलब है अल्लाह ताला का दुरूद भेजने का। अच्छा, अब आज हम एक और दुआ देखते हैं जो कि वुजू के बाद की है, जो वुजू के बाद हमने पढ़नी है, और जो इंसान वुजू के बाद ये कलिमात कह देगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिससे चाहे दाखिल हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हम पर शफकत और मेहरबानी फरमाई कि कितने आसान आसान अमल हमें सिखा दिए, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है कि हमारा बड़ा जोर लग रहा है इनमें, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी मुशक्कत है, खड़े रहना पड़ता है, या पता नहीं क्या उल्टे सर नीचे तो पैर ऊपर करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इतनी आसान आसान चीजें, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अफजल अमल में से, अफजल अमल में से क्या है, अल्लाह से राजी रहे, उसके फैसलों पे राजी रहे, क्योंकि ये वाकई एक अमल ही है। तो जो हम वुजू की बात कहेंगे, शहदुल्ला शरीक वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, बहुत सारे लोगों को ये पहले भी आता होगा। और देखिए, याद रखिए, नेकी की हिर्स किया कीजिए। हाँ, एक होता है खुद नेकी करना, सिर्फ एक होता है अपनी नेकी को कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसे हम करें, जो आप सीखते हैं ना इसको आगे पहुंचा दें, चाहे तो इसी प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड कर दें, चाहे तो आप जुबानी लोगों को बता दें, इन बातों को फैलाइए, कोई भी आपके कहने की वजह से अगर अमल कर लेगा तो इसका अजर किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आज हमने अपनी नमाज को कैसे चार चांद लगाने हैं, हमने इंशाल्लाह जो सजदे की दुआएं हैं ना, सजदे में जो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला, तो आज हम इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं, ठीक है, हम खुद नहीं कर रहे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें सिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल बदल के सज्दे में ये तस्बीहात जो सज्दे की हैं या दुआएं जो सज्दे की हैं ये बदल बदल के पढ़ा करते थे, तो बहुत सारी हैं हमारे पास, तो हम पढ़ते ना सुभान रब्बी अल आला, तो अब इसके साथ मिला दें वबी हमदी, अस मुश्किल तो नहीं है ना, वबी हमदी सुभान रब्बी अल आला वबी हमदी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप बदल बदल के पढ़ते हैं तो फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है, जब एक ही चीज करी जाती है तो फिर अक्सर ये होता है कि इंसान फोकस लूज कर देता है और बस एक रूटीन सी बन जाती है। आज की जो दुआ है बहुत अहम दुआ है, और मेरे ख्याल में जितनी चीजों से हम बचने के लिए दुआएं करते हैं ना, उनमें टॉप पे अगर कोई चीज जिससे बचने की हमें दुआ करनी चाहिए वो यही है, पे। और क्यों है इसके ऊपर कल हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे, अभी तो इतना वक्त नहीं है। तो दुआ क्या है, दुआ सिर्फ सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। किस चीज़ से? अन उशरी का बिका, कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक ले रहा हूँ। वह अना आलम, जबकि मुझे इसका पता हो। वह अस्तगफिरु का, और अल्लाह ताला मैं बख्शिश मांगती हूँ। लिमा ला आलम, उससे जो मैं नहीं जानती, यानी शिर्क से अल्लाह मुझे बचा लेना। ऐसा शिर्क भी जिससे जिसका मुझे पता है, और कई शिर्क ऐसे हैं पता ही नहीं है कि ये भी शिर्क है। अल्लाह उससे मुझे माफ कर दे वो। और दुआ ना जब भी मांगे, आज जैसे हमें पता है कि एक घड़ी ऐसी आनी है जिसमें जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। दुआ जो है, याद रखिएगा, गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनता। यानी जैसे कि हम पढ़े, अच्छा ये जो किताब पकड़ ली और उसमें से सारी दुआएं पहले सफ़े से लेके आखिर तक धड़ा धड़ पढ़ते गए, ना कोई पता है क्या है, ना कोई दिल उसके अंदर है। नहीं, जितना आपका दिल होगा ना दुआ के अंदर, आप वाकई जैसे मांगना मांगना ही हो, पढ़ना ना हो, दुआ मांगी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। पढ़ते हम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी मसनून दुआएं जिनसे हमें मदद मिल जाती है कि हम क्या मांगेंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को पता भी नहीं है ना मांगना क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदद तो मिल जाती है, मगर ये मतलब नहीं है कि उनको रटे की तरह बस ऐसे रटी हुई चीजें आप उनको, या याद भी है तो उनको ऐसे ही बस बोलते जाए, हमें ना ये ना पता हो कि हम क्या कह रहे हैं। और अगर पता भी हो तो दिल ही ना उसके अंदर, यानी हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम बस हमने पूरी कंप्लीट करनी है दुआ की किताब तो हम पढ़ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुलूस के साथ ये कि अल्लाह ताला के सामने ये इजहार करें कि मुझे वाकई ये चीज चाहिए, मैं कितनी इस चीज के लिए मोहताज हूं, मैं कितनी फकीर हूं, अल्लाह मुझे दे ही दे, बस इस तरह से होनी चाहिए दुआ। ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे बस बनाते रहते दुनिया में, ये नहीं है कोई बात, ये कोई दुआ नहीं है, ये पढ़ना है आपका, आप जैसे कोई सबक पढ़ रहे। इसलिए फिर हम कहते हैं हमारी तो दुआएं नहीं कबूल होती, ये नहीं होता, हमारी दुआओं के अंदर दिल ही नहीं है। दिखाएं तो सही अल्लाह को अपनी तलब, ये मुझे कितनी तलब। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने ये दुआ चूज की है, ये शिर्क के से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की, उस पर कल बात करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।